रात का खाना तैयार था। डाइनिंग हॉल की बड़ी सी मेज पर चांदी की प्लेटें करीने से सजी थीं। दीवारों पर लगे पुराने झूमर की रोशनी अब भी कमरे में गरिमा बनाए रखे थी। बर्तन की खनक और परोसते नौकरों की धीमी बातचीत माहौल को थोड़ा बहुत जीवित रखे हुए थी। विश्वनाथ की माँ एक साड़ी में सिर ढका हुआ खाने के पास बैठी थीं। उनकी आंखों में थकावट थी, दिन भर की नहीं बल्कि सालों से खिंची उम्मीदों की थकावट। वो एक ही दिशा में बार बार देख रही थीं, शायद दरवाजे की ओर। तभी धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। श्यामली आई थी। बालों को पीछे समेटे हुए चेहरा अब भी उतना ही शांत, लेकिन वो चुप्पी अब और गहरी लग रही थी। माँ ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराने की कोशिश की। आ गई बहू, चलो बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। श्यामली ने धीरे से सिर हिलाया और एक खाली कुर्सी की ओर बढ़ गई, वही जगह जहां से विश्वनाथ की कुर्सी ठीक दाईं ओर पड़ती थी। लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था और शायद आज भी नहीं आएगा। माँ ने खाना परोसने का इशारा किया और नौकरों ने धीमे धीमे थालियां भरनी शुरू की। कुछ पल बाद माँ ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ तुमने खाना सिर्फ मेरे कहने पर शुरू किया है। श्यामली ने बिना देखे जवाब दिया, जी, पर दिल कहाँ है ना तुम्हारा इस थाली में। अब श्यामली ने उसकी ओर देखा। माँ की आंखें अब सख्त नहीं थीं, वे नरम थीं, मानो वो सिर्फ एक सास नहीं एक टूटी हुई माँ बन गई थीं जो अपने बेटे के व्यवहार से खुद भी टूटी हुई थीं। विश्वू ऐसा नहीं था, कभी नहीं था, माँ ने फुसफुसा कर कहा। बहुत हंसमुख, बहुत सजीव, पर पता नहीं कब ऐसा हो गया। श्यामली चुप रही। उसने एक निवाला लिया पर गले से नीचे उतारना कठिन हो रहा था। उसने पानी पिया जैसे कोई बुरा स्वाद धोने की कोशिश कर रही हो। माँ की आंखें नम थीं। मुझे लगा था तुम्हारे आने से वो बदलेगा, घर में बहू होगी तो घर जैसा महसूस होगा उसे। पर फिर वो एकदम चुप हो गई। श्यामली ने बहुत धीरे से पूछा, क्या वो अक्सर ऐसे ही रहते हैं? माँ ने सिर झुका लिया। हाँ, शादी के लिए भी बहुत मुश्किल से राजी हुआ, बचपन से हर चीज में ठंडा रवैया, पर अब तो जैसे सब रिश्तों से भी दूरी बना ली है। ऑफिस, किताबें, अकेलापन, बस इन्हीं में डूबा रहता है। श्यामली ने धीरे से अपनी थाली किनारे कर दी। उसका मन खाने से अब पूरी तरह हट चुका था। माँ ने देखा पर कुछ नहीं कहा, बस साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने कहा, बहू तुम मत बदलना, तुम वैसी ही रहना जैसी हो। मैं जानती हूं बहुत कठिन है ये सब, पर अगर तुम भी ठंडी हो गई तो इस घर में कोई गर्मी नहीं बचेगी। श्यामली ने माँ की ओर देखा। ये पहला पल था जब दोनों औरतें एक दूसरे की पीड़ा को बांट रही थीं, एक सास जो अपने बेटे के खोने से टूटी थी और एक बहू जो अपने पहले ही दिन अपने सपनों के टूटने की आवाज सुन चुकी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंकी। माँ ने जल्दी से नौकर को इशारा किया। कुछ ही देर में नौकर लौटा। साहब नहीं है, आर्यन बाबू आए हैं। माँ ने गहरी सांस ली। उसे भी वक्त बेवक्त घर आने की आदत है। श्यामली ने नजरें झुका ली, कुछ पल बाद चुपचाप उठी और धीरे से बोली, क्या मैं कमरे में जाऊं? माँ ने सिर हिलाया। ठीक है बहू, खाना थोड़ा सा ले जाओ, बाद में खा लेना। नहीं चाहिए, श्यामली ने बहुत विनम्रता से कहा, भूख अभी भी नहीं है। वो धीमे कदमों से वापस चली गई। डाइनिंग टेबल पर उसकी अधूरी थाली और माँ की नम आंखें दोनों रह गईं। अज्जू, आर्यन ऊपर अपने कमरे में जाता है, एक छोटा सा लैंप चल रहा है, टेबल पर उसका फोन रखा है। वो बैठते ही फोन उठाता है, कुछ देर स्क्रीन देखता है, फिर गैलरी खोलता है। पहली तस्वीर आज की ही श्यामली की, रस्म में बैठी, हाथों में मेहंदी, आंखों में उम्मीद। आर्यन एक पल को रुक जाता है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, बस गहराता हुआ सवाल। उसने मोबाइल स्क्रीन को धीमे से लॉक किया और बिस्तर पर गिरकर छत देखने लगा। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा चुका था, लेकिन हर कमरा, हर रिश्ता किसी न किसी सवाल से गूंज रहा था।